الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا بالله. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے دلوں کی اصلاح کر سکیں، اپنے دلوں کو خیر اور رحمت کا ذریعہ بنا سکیں. امید ہے کہ کل کی ساری باتیں جو بھی ہم نے اس میں کہی اور سنی، ان سب کو سننے اور کہنے کے بعد ہمارے دلوں میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی ایسی چیز آئی ہوگی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے گی. کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کرتے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر کی طرف مائل کر دیتا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک دھلائی کرنے کا وقت، ایک اپنے آپ کو سنوارنے اور سجانے کا موقع ہر دن آپ کو مجھے ملتا ہے. اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کیجیے، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، اور خود کو یقین دلائیں کہ میں اس وقت دنیا کی سب سے خوش قسمت ہستی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر سے اپنے لیے عمل کی باتیں بھی لیتی ہوں. جب ہمارے اندر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ اندر کا شور ہوتا ہے جو باہر نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جتنا زیادہ قرآن پڑھنے والے مطمئن کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہر بندہ جو کسی ٹیکنیکل پلیٹ فارم پہ اس وقت بھی ہے، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، اس بات کو ذہن میں رکھیں. آئیے شروع کرتے ہیں بڑی محبت اور اس پیار کے ساتھ کہ ہم آج اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد ولی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد ولی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم ولی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے رمضان ربیع قلبی، رمضان میرے دل کی بہار، اس سلسلے کا آج ہمارا دوسرا دن ہے. آج کا ہمارا جو گول ہے، جو ہدف ہے، سب سے پہلے بیوٹی ٹپ اور اس کے بعد پھر آج کی دعا، ہدایت کی دعا، اور اس کے بعد پھر دل کے بگاڑ یعنی بگڑے ہوئے دل، وہ دل کے جن کے اندر ہدایت کا پانی نہیں جاتا، آج ہم اس کا پہلا پارٹ کریں گے. اور یہ ٹاپک ہم دو دن میں کریں گے انشاءاللہ. آج ہم چھ ایسے دلوں سے اپنا تعلق جوڑیں گے کہ جن کو ہم نے جاننے کے بعد اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور کوئی ایسی بات جو دوسروں میں ہمیں دکھے اس کو ہائی لائٹ کیے بغیر اپنی کمیوں بیشیوں کو دیکھنا ہے. تو چلتے ہیں رمضان ربیع قلبی. ہم نے کل ایک حدیث دیکھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، ہے بھی آف کورس، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو. مراد یہ کہ آپ خوبصورت ہیں یا آپ کی شکل واجبی ہے، وہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کتنا اخلاص ہے اور کتنا حسن نیت ہے. اس کو پڑھنے کے بعد کیا آپ نے کچھ سوچا؟ اس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا؟ ہمارے دلوں سے، ذہنوں میں سے یہ خیال آج نکالنا ہے کہ میں کیسی لگتی ہوں، ہاؤ آئی لکس لائک. آج لوگ ظاہر میں کھو گئے اور یہ ایک ایسا کلچر بن گیا کہ جس نے آج ہمیں سب کو ایک ایسی دنیا میں ڈال دیا کہ جس کے بعد ہم واقعی محسوس نہیں کر پاتے، لیکن غیر محسوس طریقوں سے ہم مادہ پرست ہو گئے. تو اس حدیث پہ یقیناً آپ نے بھی غور کیا ہوگا، میں بھی کر رہی ہوں اور اس وقت آپ کو بھی غور و فکر کا طریقہ سکھا رہی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کیا حقیقت میں ہم صرف شکل و صورت میں تو نہیں کھو گئے. سوال یہ کہ اللہ کیوں نہیں دیکھتا ہمارے جسموں اور ہماری شکلوں کو؟ اس لیے کہ وہ اس نے بنائی. اپنی بنائی ہوئی چیز کا تو اندر کھاتا بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا ڈالا، کیا نکالا، کیسے گوندا، کیسے بنا، کیسے سیا. امپریس تو ہمیشہ انسان کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ جن کو کبھی دیکھا نہ ہو، جس کے بارے میں کبھی جانا نہ ہو. ہاں، لیکن دلوں کو اللہ کیوں دیکھتا ہے؟ ایک روایت میں ساتھ اعمال کی بھی بات ہے اور دلوں کی. اس لیے کہ یہ بندے کو کمانے پڑتے ہیں، ये हमारे कसब हैं, ये हमारी कमाइयां हैं। हम इन कसब और कमाइयों में जितना ज्यादा अपने आप को खुपाएंगे, कल अपने मालिक की नजरों में उतना ही जचेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारी कल की स्टडी टिप थी कि अपनी सोचों की हिफाजत करें, ब्यूटीफाई योर थॉट्स, पे अटेंशन टू योर थॉट्स। क्या आपने इस पे गौर किया? आपको इसमें से क्या दिखा? अपने लिए अगर आप इसमें से कुछ अमल के नुक्ते ले सके होंगे, तो यकीनन आपने कुछ बहुत सारी सोचों को अपने से दूर किया होगा। और अगर कल मैं आपको नहीं दे सकी, तो मैं देना चाहूंगी कि हम बस दफा अपनी सोचों की हिफाजत ना कर सकने की वजह से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि रह जाती बेकार किस्म की चीजें हमारे जहनों में आने लगती हैं। हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, फुलां ऐसा फुलां वैसा। यानी सोचों की हिफाजत दो तरह से होती है कि आप जितना ज्यादा किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, आप उतने नेगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव सोचें पॉजिटिविटी देती हैं, नेगेटिव सोचें नेगेटिविटी देती हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप किसी के बारे में भी गलत मत सोचें। और ये आपका रमज़ान आपके दिल को ऐसे कर दे क्रिस्टल क्लियर। अभी बड़े जाले हैं, अभी हमारे दिल पर बड़े पर्दे हैं, अभी हमने अपनी सोचों पे इतनी बारीक बारीक किस्म की छोटी छोटी तारें डाली हुई हैं कि हमें वो अल्लाह का कलाम और अल्लाह का वो नूर नहीं दिखता। आप देखिए कि सूरत नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसल नूर ही का मिशकात, उसके नूर की मिसाल तो मिशकात की तरह है। और फिर मसल नूर ही का मिशकात, और उसके आगे अल्लाह ने एक ईमान वाले बंदे की बात जो कर दी, उससे क्या पता चलता है कि अल्लाह सुबहान ताला एक इंसान को कैसे मुख्तलिफ तरीकों से इन सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र की दावत देते हैं। आपने मैंने अपने दिल को साफ करना है। दिल को साफ करने का तरीका सोचें साफ कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप घर साफ देखना चाहते हैं, तो क्या आप वहां जाकर कुछ डेकोरेशंस लगा देंगे? लिखिए एक मिसाल। डेकोरेशन पीसेस लगाने से पहले दीवार को झाड़ा पहुंचा जाता है, उसके ऊपर से जाले हटाए जाते हैं, वरना क्या होगा, गंदी दीवार के ऊपर अगर आप तस्वीर लगाएंगे ना, तो वो तस्वीर भी खूबसूरत नहीं लगेगी। बिल्कुल इसी तरह से ये मामला होता है कि जब हमारे दिल के अंदर गंदगी होती है ना, तो जो हम इबादत करते हैं या हम कोई नेकियों के फूल बूटे लगाना चाहते हैं, वो सारे भी नहीं सजते। तो अब रमज़ान में चूंकि बहुत सारी नेकियां करनी है, बोलिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसका मौका भी दे और इसकी तौफीक भी दे। तो उससे पहले दिल की दीवारों को धोना है। और पहली चीज़ जो हमने सीख ली वो क्या था कि अपनी सोचों की हिफाजत करनी है, गंदी सोच गंदी बात गंदी चीज़ नहीं लानी इस दिल पर। और उसका नतीजा क्या होगा जो हमने देखा था, अखलाक के फूल खिलेंगे। आपके मेरे दामन में इतने अखलाक के फूल खिल जाए इस रमज़ान में और अभी से लेके के फूलों की क्यारियाँ और पूरी पूरी नर्सरियाँ बन जाएं। आपका अखलाक लोगों को बुलाए कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। हमें ये तो नहीं पता कि ये नमाज कितनी अच्छी पढ़ते हैं, इनके रोज़े कैसे हैं। देखिए मेरी आपकी इनफरादी इबादत जो है ना, वो हमारे अपने लिए होती हैं। हम जितना ज़्यादा अपने लिए इन चीज़ों को लेते हैं, हमें उतना ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। लेकिन जो दूसरों को मिलता है वो तुम्हारा अखलाक मिलता है। आप सारी रात तहज्जुद के निया से खड़े रहें, किसी को क्या लगे, लेकिन कोई आए और आप उससे सीधे मुंह बात ना करें तो क्या होगा, सारी नमाजें ख़राब हो जाएंगी। और इसीलिए तो आप देखते हैं कि लोग फिर बदनाम करते हैं दीन को। और लोगों को तो बहाना चाहिए, वो कहेंगे दीन वाले होते ही ऐसे। अच्छा कोई कितना भी बुरा हो जाए, लोग कहेंगे इट्स ओके, ऐसे ही होता है। ज़रा सा आपका दीन के साथ ताल्लुक जुड़े और फिर आप बुरे बन के देखिए, आप नहीं दूसरे दीन को बुरा कहेंगे। तो लिहाजा इसी पे रहते हुए आज की अगली टिप लिखिए जो आपको मुझे लेनी है, और फिर हम उसमें से कुछ अमल के नुक्ते लेंगे। आज के दिन की टिप यानी ब्यूटी टिप ऑफ टुडे, टुडेस ब्यूटी टिप कुछ भी कह लीजिए, जिस चीज़ पे आपका दिल जमे और जिस चीज़ को आप ले सकें, वो क्या है, रिमेंबर द गुड इन अदर्स एंड एक्सपीरियंस अल्लाहस नेम अशकूर। दूसरों में अच्छी चीज़ें ढूंढिए, दूसरों की अच्छी बातें याद कीजिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए और सोचिए कि अल्लाह कैसा अशकूर है। अल्लाह सुबहाना ताला कैसे मेरे साथ इस तरह का मामला फरमाता है कि मैं जिसके बाद उसके मामले में मैं क्या हूं। जब अल्लाह ताला बंदों की छोटी छोटी चीजों की इतनी केयर करे, इतना ख्याल करे, तो फिर मेरा आपका तो क्या हाल होगा। होता क्या कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि लोग भी इंसान हैं। कभी कभी होता क्या है कि आप लोगों के अंदर से फूल चुनने की बजाय कांटे चुनने लगते हैं। तो चंद जेम्स नोट कीजिए। पहली बात कि अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है। अल्लाह सुबहान तला की सिफत अशकूर को याद कीजिए, क्योंकि वो हमारे आपके छोटे छोटे आमाल की कदर करता है। वो आपके मेरे छोटे छोटे आमाल को देखता है। सच बताइए, कल रात जो नमाज पढ़ी थी वो इस काबिल थी कि कबूल हो? आज जो नमाज अदा की फजर में, क्या वो काबिल थी? तो जब उसने आपकी मेरी चीज़ों को अपने हाथ में रख लिया, तो फिर मुझे आपको दूसरों में क्यों बहुत कुछ दिखना है? फिर इसी तरह हमारी नीयत, हमारे जज्बात और हमारे सब्र की भी वो रब ही कदर करता है। और वो खुद कहते हैं, वलैन शकर तुम लाजीदन्नकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें नेमतें और ज्यादा दूंगा। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जितना तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमत बढ़ती जाएगी। और हकीकत यह है कि हम दुनिया में इंसानों की जब कदरदानी करते हैं, जब हम इंसानों के लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं, तो हमारी कदरदानी होती है। आप किसी की पकी हुई दाल की तारीफ करें, गोया कि आपने हर दफा की दाल में अपना हिस्सा डाल लिया। वो कहेगा, इनको अच्छी लगी थी, मैं ले जाती हूँ। और अगर आप इस चीज़ को लेकर चलते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, हम तो खाते ही नहीं, मेरे बच्चे नहीं खाते किसी के घर का, और आप दो चार दिन के बाद जाकर देखें तो आपको अपनी दोस्त के घर में बाहर पड़ी हुई वो पतीली दिखे जो आपने बड़े प्यार से बनाकर भेजा खाना, अगली दफ़ा देंगे? तो लिखिए खुश रहने का राज, और वो चीज़ जिसको इंसान भी पसंद करे और अल्लाह सुबहान तला भी पसंद करे, वो क्या है? कदरदान बनिए। जिसने कभी अपने मोहसिन का हक अदा ना किया, याद रखिए वो कभी इंसान खुश नहीं रहेगा। मोहसिनों में सबसे बड़ी हस्ती तो अल्लाह की है, फिर माँ बाप हैं, फिर दुनिया में हर वो इंसान जिसने हमें एक एक लम्हे के साथ परवान चढ़ाया। हमारे अपने लोगों को देख लीजिए, स्कूलों में बच्चों को टीचर्स जो पढ़ाते हैं, चाहे वो उर्दू सिखाएं, चाहे साइंस सिखाएं, कुछ भी सिखाएं, वो अल्लाह सुबहान तआला की हस्ती है उसकी। लिहाजा आपने मैंने भी उसी को अपने सामने रखना है। फिर इसके बाद आप देखिए कि आप वाकई खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो कुछ और चीज़ें मुहासवा कीजिए कि हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा होता है, मैं दूसरों के साथ कैसे डील करती हूँ। हम बाज दफा लोगों से चाहते हैं वो हमारे साथ बड़े अच्छे हों, लेकिन हमने कभी अपने दामन में झांक कर नहीं देखा। फिर इसी तरह दूसरों की खैर और भलाई जब याद करेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा कि जिसके अंदर झांक कर आप अपनी भी इसलाह कर सकें। फिर इसी तरह एक और चीज़ जिसमें आप खूबसूरती अपने अंदर पाएंगे, वो क्या है कि अगर कभी गुस्सा आ जाए तो मुश्तइल ना हो। गुस्सा आग है, और आग बगोला होना आपको बहुत ही बदशक्ल बना देगा। दिल जल जाता है इंसान का ऐसी चीज़ों में। और एक चीज़ इसी में याद रखिए कि लोगों का शुक्रिया अदा करना सीखें। हम दिल से अंदर तक मशकूर होते हैं, लेकिन मुंह से कहते हैं हाँ क्योंकि खाम खा सर पे चढ़ जाएंगे, लो अब इतनी क्या बात है और इतनी क्या बात है। इसी तरह से आप महसूस करके देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए थैंकफुल होंगे, लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। और फिर आखिरी बात जिसमें आज की इस ब्यूटी टिप को समअप करूंगी, वो क्या कि लोगों की और रिश्तों की कदर कीजिए। आप अपने फ़ोन की कदर करते हैं, हर वक्त सीने से लगाए रखें, हाथ में रखें, ऑक्सीजन मास्क बना लें, लेकिन अल्लाह ना करे दिल का दौरा पड़े तो फ़ोन काम नहीं आएगा उस वक्त। इसी तरह से आप देखिए कि हम आज मशीनों में खो गए, इंसान पीछे रह गए। अपने आप को हमेशा इस चीज़ के साथ जोड़ के रखा करें कि मैंने इंसान दोस्त बनना। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में इतने अहम होते हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगाते, और जब वो चले जाते हैं फिर आपको कदर आती है। और कभी कभी तो खून के रिश्तों में हम ये मामला कर देते हैं कि कैसे ये होगा और क्या होगा और क्या सारी चीज़ें, तो आपने इंसानों की कदर करनी है। एक बहुत खूबसूरत वॉस हो सजा संवरा, वो टूट जाए तो इतना नुकसान नहीं होता। किसी का दिल टूट गया तो बड़ी बात है। तो आपने, मैंने इंशाल्लाह अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना है कि ऐ मेरे मालिक मुझे इंसानों की कदर करने की तौफीक दे। तो फिर सम अप कर देती हूँ आज की ब्यूटी टिप्स को। लोगों की अच्छी बातों को याद रखिए और अल्लाह के अशकूर होने को जहन में रखें। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि वो हमारे टूटे फूटे आमाल की इसलाह फरमा दे और हमारी कदरदानी फरमा दे। तो ये थी आज की टिप, अब चलते हैं आज की दुआ पे। हर दिन बस हम एक ही दुआ सीखेंगे और आप देखेंगे कि वो दुआ हमारी बहुत सारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनेगी। तो हमने नियत की है रमदान को रबी या कल्बी बनाने की, मगर कैसे? तो जरा सोचिए, रमजान मेरे लिए दिल की बहार बन जाए, ये कैसे होगा? एक तरफ हम इंसानों के साथ अपने मामलात दुरुस्त करते रहेंगे, अपने आप को संवारते रहेंगे डेली टिप्स के साथ, और इसी तरह से दूसरी तरफ हम फिर दुआएं सीखेंगे और कुरान पढ़ेंगे। तो कहिए, कुरान मेरे दिल की बहार बन रहा, बनेगा इंशाल्लाह। जब सुबह शाम रात दिन आपका इस किताब के साथ मामला चलेगा, तो आप महसूस करेंगे कि ये कुरान हकीकत में आपका बेहतरीन दोस्त बनता जा रहा है। ये वो किताब है जो आपको अपने दोस्तों से ज्यादा प्यारी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आप फिर इसकी बहारों को ना सिर्फ ये कि खुद लूटेंगे बल्कि दूसरों को भी देंगे। तो हमारी आज की दुआ, वो दुआ जो आप और मैं सबसे ज्यादा मांगते हैं, शुरू से मांगते रहे, और वो दुआ जिसको मैं कह सकती हूं कि सबसे ज्यादा बेशौरेपन में मांगते हैं हम, वो मांगते हैं और जो हमें मिल भी जाए तो हमें पता भी नहीं होता, और जिस दिन पता लग गया अल्लाह रहम करे शायद मांगना ही छोड़ दें, बिलीव मी। क्योंकि अमूमन लोगों का रवैया क्या होता है कि गॉड गिव मी गाइडेंस बट नॉट सून, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे मगर अभी ना दे, 40 साल के बाद देना, शादी के बाद देना, और मुझे इस तरह से करना और वैसे करना, क्योंकि हम हिदायत मांगते हुए डरते हैं। तो सूरत अल फातिहा जो दिन में कम से कम 17 बार तो फराइज की सूरत में हमारी जुबान पे होती है, और इसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो फिर और उसकी दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। आज हम इस दुआ में डूब जाएंगे, देखिएगा, इतना डूबेंगे कि जब हमारा वक्त खत्म होने वाला होगा तो फिर बाहर निकलेंगे, क्योंकि आज इसकी जरूरत है। फीकी चाय पीने वालों को मीठी चाय का टेस्ट भूल ही जाता है। आज हमने कुरान और हदीस को बस एक अजर और सवाब की चीज समझ लिया, लेकिन इसके अंदर से हमारे लिए वो चीजें जो हमारी जिंदगी में बेहतरी ला सकती हैं वो कम होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इस दुआ में हमें क्या मिलेगा, हम इसको देखेंगे। आइए सबसे पहले इसका लफ्जी तर्जुमा, इहदीना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे की। एक ही दफा देखिए बा मुहावरा तर्जुमा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हमको सीधे रास्ते पर चला, हमें गाइड कर दे। जब आप और मैं ये दुआ मांगते हैं तो उसके बाद वाकई अल्लाह सुब्हान तआला जब ये दुआ पूरी करता है तो क्या होता है, अब हम चलेंगे एक एक लफ्ज पे। और इहदिना हमें हिदायत दे, हम इसमें दो लफ्ज इकट्ठे बोल रहे हैं, हिदायत और उसका भी फेले अमर, और ना हमें। किसको हिदायत चाहिए? हमको चाहिए। हिदायत का लफ्ज हा दाल या से है। हिदायत कहते हैं लुत्फो करम के साथ किसी की रहनुमाई करने को, प्यार से, मोहब्बत से, अपना समझकर किसी को गाइड करना। कौन करता है ऐसे? माँ करती है। और कौन करता है? बाप करते हैं। और कौन करते हैं? रसूलों ने किया, पैगंबरों ने किया, अल्लाह वालों ने किया, उस्तादों ने किया। तो प्यार और मोहब्बत से किसी को गाइड करना, इसको हिदायत कहते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता नोट कीजिए, आप में से वो साथी जो बिल्कुल नए नए इस सफर में शामिल हो रहे हैं, कि हिदायत और हदिया जिसको आप गिफ्ट कहते हैं और हिदायत को हम गाइडेंस कहते हैं, दोनों का एक ही रूट है, हा दालिया। तो हिदायत एक हदिया है, गाइडेंस इज अ गिफ्ट। महसूस करते हैं? आपको कोई गिफ्ट मिले तो आपको कैसा लगता है? दिल खिल जाता है, सस्पेंस होता है, मोहब्बत लगती है। तहादु तहाबु, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि तोहफे दो, मोहब्बत बढ़े। आपस में दो भी तो लो भी, अगर लेते हो तो दो भी, तो मोहब्बत बढ़ेगी ना। तो हमारी मोहब्बत जो है वो बढ़ जाती है कब? जब हम बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला से गाइडेंस लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को चार तरीके से हिदायत दी है। यानी यहाँ एक छोटी सी बात पहले नोट कीजिए, लिखिए। अल्लाह सुबहाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा और उनसे एक खता हो गई, तो उसकी फौरन ही तल्लाफी करते हुए उन्होंने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन कहा, तो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, फताब अल्लाह, कबूल कर दिया। तो क्या कहा, आप जाइए वापस। उन्होंने अपनी जुबान में सवाल किया होगा कि अल्लाह ताला, जब आपकी नाराजगी खत्म हो गई तो जन्नत वापस दे दीजिए। जिसमें से निकाल दिया गया, तो जवाब क्या मिला कि अब नहीं। फइम्मयातियन्ना, अब जब कभी आएगी मेरी तरफ से हिदायत तुम्हारे पास, मैं अंबिया भेजूंगा, मैं किताबें भेजूंगा और वो तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाएंगे, तो फिर जो उसकी पैरवी करेगा, फमन तबी या खुदा या फला खौफ अलैहिम वला हुम यहसनून। तो हिदायत का वादा अल्लाह ने हजरत आदम के साथ ही दिया था। लिखिए चार किस्म की हिदायतें जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रखी। एक वो हिदायत है जो हर इंसान की जाती जरूरियात के लिए होती है। मसलन, मछली के बच्चे को पैदा होते ही तैरना कौन सिखाता है? अल्लाह ताला। ये है पहली हिदायत, यानी वो हिदायत जो अक्ल और फतानत और मुआरफ़े ज़रूरिया यानी दुनिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अता की जाती है। परिंदे को उड़ना सिखाना, मछली को तैरना सिखाना, ये सब को मिलती है। पैदा होता बच्चा कौन सिखाता है दूध पियो? अल्लाह ताला कहते हैं वहदैनाहुन्न नजदैन। हम दुनिया में आते ही दो रास्ते दिखा देते हैं। तो एक बच्चा जब माँ से दूध ले लेता है, कौन सिखाता है? कौन सा कोर्स हुआ नर्सिंग का? पेट में दर्द है तो रोना है, कान में दर्द है तो रोना है। ये है पहली हिदायत। ये इंसान के बच्चे के साथ भी है और ये हैवानात के साथ भी है और दूसरों के साथ भी है। ये हिदायत है पहली, इसमें सब कॉमन है। आज आपको एक बहुत बड़े सवाल का जवाब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, तो दूसरे जो किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा हुए, अब वो क्या करें? इसका जवाब आज की इस नशिस्त के एंड तक आपको मिल चुका होगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी किस्म होती है जो अंबिया कराम के जरिए भेजी गई, वही। यानी आप इसको अरबी में कहेंगे तो वह और उर्दू में कहेंगे तो वही। यानी अल्लाह ताला ने अंबिया कराम भेजे, किताबें भेजी और उन्होंने इंसानों को राह निजात की तरफ दावत दी। जितना ज्यादा अल्लाह के नबी किसी कौम की तरफ गए, उतनी उन पे हुज्जतें तमाम होती गईं और उनको हर चीज की बात खोल के बता दी गई। जिन्होंने नबी की पुकार पे लब्बैक कहा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्लाह ने उनसे वादा कर लिया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिन्होंने इनकार किया, तो फिर उनको रसूल के इनकार पे तो हलाक कर दिया गया, जैसे कौम नूह डबो दी गई, इसी तरह कौम सालेह अलैहिस्सलाम और कौम आद और बाकी कौमों को तबाह किया गया। तो गोया के अंबिया कराम को भेजकर हिदायत की दूसरी किस्म अलग रखी गई। इसी तरह से याद रखिए कि एक तीसरी हिदायत होती है जिसको तौफीक कहते हैं, खास तौफीक। ये हिदायत याफ्ता लोगों को अता होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया की पुकार पे लब्बैक कहा। नबी तो सबके पास आए, जो भी उस दौर के लोग थे, लेकिन तौफीक ना मिली सबको। लोग फायदा नहीं उठाते अंबिया कराम से, और आज भी लोग हिदायत वाली बात से फायदा कम उठाते हैं और दूसरी बातों से फायदा ज्यादा उठाते हैं। इंसानों को ऐसे लगता है कि जैसे लोग लेट डाउन करते हैं और वो सोचते हैं कि छोड़ो इनकी क्या बात है। तो वो लोग जो नबियों की बात सुनकर चल पड़े, उनको तौफीक मिल गई, वो तौफीक के दर्जे पे आते हैं। और फिर एक चौथा दर्जा हिदायत, क्या कि आखरत में जन्नत मिल जाए। यानी चलते 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 इस दुनिया से गुजरते गुजरते एक इंसान जन्नत तक पहुंच जाए, ये दर्जे तय होंगे तो बात बनेगी। फिर इसके अंदर आप देखिए इंसान को अकल दी, ये भी एक हिदायत है, इसको भी नोट कीजिएगा। अकल क्या है? बंदे को रास्ता दिखाती है, किस चीज का क्या अच्छा है क्या बुरा। आप देखिए कि कोई शख्स अपने आप को मुनकर कह दे, मुसलमान कह दे, कुछ भी कह दे, अंदर से सब एक ही जैसे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुबहान तआला की हस्ती, अल्लाह तआला की जात हर बंदे को अकल देती है। घास अगर एक मुसलमान को सबस दिखता है तो दूसरे को भी सही दिखता है, लेकिन मुसलमान उस घास को देखकर घास पैदा करने वाले तक पहुंच जाता है। इसके बरक्स दूसरी तरफ मामला दूसरा होता है। तो जरूरत है इस बात की कि एक इंसान इस पे गौर करे। इसमें भी सब बराबर है, देखिए अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा होते ही सबको एक जैसी हिदायत, जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब एक जैसे हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम भेजे अपने दौर के लोगों के लिए, सब बराबर थे। हाँ, रह गया आज के दौर के गैर मुस्लिमों का मामला, जो किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा किए गए। तो याद रखिए अल्लाह ने एक हिदायत जो हर एक को दी है वो है वादे अलस्त, अलस्तु बिरब्बिकुम, लोगों को ये बताकर कि दुनिया में जाओगे तो तुम रब को रब मानोगे, ये बनाकर ये करके अल्लाह ने हमारी फितरत में गूंद दिया, आप कह लीजिए कि हमारे डाटा में फीड कर दिया, इंडल्ज कर दिया, ये भी सब में बराबर है। अब अगर आज कुछ लोगों तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराह रास्त पैगाम नहीं पहुंचा तो वो पैगाम जाना था इनडायरेक्टली और वो उम्मत मुस्लिमा ने देना था। तो लिहाजा अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। कायनात को देखकर हिदायत मिलती है, कुरान को कहते हैं कुरानी हिदायत, तो कायनात को देखकर कहते हैं कौनी हिदायत, इसमें सब बराबर है। सूरज चांद को देखिए, सितारों को देखिए, कुरान बार बार दावा देता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहार, ये सारा कुछ क्या बताता है कि देखो रब को पहचानो, सुबह शाम को देखो, चढ़ते सूरज को देखो, डूबते सूरज को देखो, तुम्हें रब दिखेगा। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हिदायत के एतबार से सारी ही चीजें समझा दी।